आज के इस डीप डाइव में एक बहुत ही मजेदार और गहरी चर्चा होने वाली है। आज का हमारा मिशन है भारत की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन के बारे में जानना।
बिल्कुल, और इसे हरप्पन सिविलाइजेशन या इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहा जाता है।
हाँ, हमारी आज की पूरी चर्चा चैप्टर 6, जिसका नाम है द बिगिनिंग्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, उस पर आधारित है।
ये जानकारी बच्चों के लिए बहुत ही रोमांचक होने वाली है।
एग्जैक्टली। ओके, लेट्स अनपैक दिस। जरा कल्पना की जा सकती है कि आज से 4000 साल पहले एक ऐसा शहर था जहां पक्की सड़कें थीं, नालियां थीं, और सबसे बड़ी बात, वहां कोई लड़ाई झगड़ा या युद्ध नहीं होता था।
इतिहास में इतनी शांत जगह मिलना बहुत ही दुर्लभ है। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज, मशहूर इतिहासकार बीबी लाल ने कहा है कि ये समाज एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण पर नहीं चलता था।
मतलब कोई किसी को दबाता नहीं था।
जी हाँ, ये समाज म्यूचुअल अकोमोडेशन यानी आपसी तालमेल पर चलता था। अमीर और गरीब के बीच बहुत बड़ा अंतर नहीं था, सब मिलजुल कर रहते थे।
ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और आगे बढ़ने से पहले, रिमेम्बर दिस, हरप्पन सिविलाइजेशन का समय लगभग 2600 BCE से 1900 BCE तक था। ये दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक है।
सही कहा। अब सबसे पहले तो ये समझना होगा कि सिविलाइजेशन आखिर कहते किसे हैं।
हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है।
आसान शब्दों में समझें तो जब लोग छोटे गांव से बाहर निकलकर शहर बनाते हैं उसे सिविलाइजेशन कहते हैं। लेकिन सिर्फ शहर ही नहीं, वहां एक गवर्नमेंट यानी सरकार होती है, ट्रेड यानी व्यापार होता है और राइटिंग यानी लिखाई भी होती है।
बिल्कुल, और इन सब में भूगोल यानी ज्योग्राफी का बहुत बड़ा हाथ होता है, खासकर महान नदियों का।
एकदम सही।
इस पुरानी दुनिया में दो मुख्य नदियां थीं, इंडस रिवर जिसे सिंधु नदी कहते हैं, और सरस्वती रिवर।
और इसके पीछे एक बहुत ही सीधा सा कॉज एंड इफेक्ट है। नदी के पास की मिट्टी बहुत फर्टाइल यानी उपजाऊ होती है।
जिससे एग्रीकल्चर यानी खेती बहुत अच्छी होती है। नदियों का ये जादू सच में कमाल का है, और सरस्वती रिवर की कहानी तो बहुत ही दिलचस्प है।
हाँ, आज ये नदी सूख चुकी है, लेकिन हमारी बहुत ही पुरानी किताब ऋग्वेदा में इसका जिक्र मिलता है।
एक देवी के रूप में ना।
बिल्कुल, ऋग्वेदा में इसे एक देवी और पहाड़ से सीधे समुद्र तक बहने वाली एक विशाल नदी बताया गया है।
ये सच में हैरान करने वाली बात है। अच्छा, एक सवाल और है, इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं?
क्योंकि 1920-21 के समय जो सबसे पहला शहर खोजा गया था उसका नाम हड़प्पा था।
तो उसी के नाम पर पूरी सिविलाइजेशन का नाम पड़ गया।
जी हाँ, यही नियम है आर्कियोलॉजी का।
बहुत बढ़िया। तो रिमेम्बर दिस, सिविलाइजेशन की शुरुआत नदियों के किनारे हुई। हड़प्पा शहर की खोज 100 साल पहले 1920-21 में हुई थी, और मुख्य नदियां इंडस रिवर और सरस्वती रिवर हैं।
और जब इन शहरों को खोजा गया तो इनकी बनावट देखकर सब हैरान रह गए।
हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। अगर इन शहरों के डिजाइन को देखें तो लगता है जैसे किसी मास्टर आर्किटेक्ट ने इसे बनाया हो।
बिल्कुल, शहर मुख्य रूप से दो हिस्सों में बटे थे।
एक अपर टाउन और एक लोअर टाउन, राइट?
सही कहा। अपर टाउन थोड़ी ऊंचाई पर था, जहां शायद एलीट यानी खास लोग रहते थे, और लोअर टाउन आम लोगों के लिए था।
और घरों को बनाने का तरीका तो बच्चों को बहुत पसंद आएगा।
हाँ, इसे लेगो ब्लॉक्स की तरह समझा जा सकता है।
एग्जैक्टली, जैसे लेगो ब्लॉक्स को जोड़कर घर बनाते हैं, वैसे ही उन्होंने बेक्ड ब्रिक्स यानी पक्की ईंटों से घर बनाए थे। चाहे घर छोटा हो या बड़ा, सब पक्की ईंटों के थे।
और सड़कों का डिजाइन एकदम सीधा था, कार्डिनल डायरेक्शंस यानी उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की दिशा में,
एकदम ग्रिड सिस्टम की तरह। और साफ सफाई की तो क्या ही बात करें।
इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, हरप्पन लोग साफ सफाई और पब्लिक हेल्थ को बहुत मानते थे।
सड़कों के नीचे ढकी हुई नालियां थी, कवर्ड ड्रेन्स,
वो भी पक्की ईंटों से बनी हुई। और पानी के जादू को लेकर कुछ बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट्स मिले हैं।
अरे हाँ, मोहनजोदारो का ग्रेट बाथ।
बिल्कुल, मोहनजोदारो शहर में एक बहुत बड़ा स्नान कुंड मिला है। इसे पानी से बचाने के लिए यानी वाटरप्रूफिंग के लिए एक प्राकृतिक तारकोल का इस्तेमाल किया गया था,
जिसे बिटुमिन कहते हैं। 4000 साल पहले वाटरप्रूफिंग,
है ना कमाल की बात। और सिर्फ इतना ही नहीं, मोहनजोदारो में लगभग 700 ईंटों के कुएं मिले हैं।
700 वेल्स,
पानी की कोई कमी नहीं थी।
और गुजरात के धोलवीरा शहर में पानी जमा करने के लिए बड़े बड़े रिजर्वॉयर्स भी बनाए गए थे।
वो लोग सच में स्मार्ट थे।
तो रिमेम्बर दिस, मोहनजोदारो शहर में ग्रेट बाथ और 700 वेल्स थे, पानी रोकने के लिए बिटुमिन का इस्तेमाल होता था, और शहर की टाउन प्लानिंग बहुत ही शानदार थी।
शहर और पानी की बात तो हो गई, अब ये भी जानना जरूरी है कि हरप्पन बच्चे आखिर क्या खाते पहनते थे।
ये मेरा फेवरेट पार्ट है। खाने में वो लोग बहुत हेल्दी चीजें खाते थे।
हाँ, खुदाई में मिले बीजों से पता चला है।
वो लोग वीट यानी गेहूं, बाली यानी जौ, मिलेट्स यानी बाजरा और ढेर सारी पल्सेस और सब्जियां खाते थे।
और इतनी अच्छी खेती के लिए वो लोग बहुत ही खास औजार का इस्तेमाल करते थे।
कौन सा औजार?
प्लाव यानी हल। खेती के लिए हल का इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर होता था।
तभी तो खेती इतनी अच्छी होती थी और फैशन के मामले में भी वो लोग बहुत आगे थे।
बिल्कुल, कपड़ों का बहुत शौक था उन्हें।
पूरे यूरेशिया में, मतलब यूरोप और एशिया में, सबसे पहले कॉटन उगाने वाले लोग हरप्पन ही थे।
सूती कपड़े पहनने की शुरुआत यहीं से हुई थी।
ये तो बहुत गर्व की बात है।
और यहाँ एक बहुत ही मजेदार कॉज इफेक्ट भी है। जब प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर हुई, मतलब हल से अच्छी खेती हुई, तो लोगों के पास बहुत खाना जमा हो गया,
मतलब खाने का सरप्लस हो गया।
जी हाँ, अब इस वजह से हर किसी को दिन भर खेती करने की जरूरत नहीं रही।
तो फिर लोगों ने क्या किया?
लोगों ने नए नए काम सीखने शुरू कर दिए, जैसे कि क्राफ्ट सीखना, सुंदर बर्तन बनाना और बारीक डिजाइन वाले गहने बनाना।
बहुत ही लॉजिकल है, पेट भरा होगा तभी तो आर्ट पर ध्यान जाएगा।
बिल्कुल सही।
तो रिमेम्बर दिस, यूरेशिया में सबसे पहले कॉटन उगाने वाले हरप्पन लोग थे। उनके मुख्य अनाज वीट, बार्ले और मिलेट्स थे।
और जो ये गहने और क्राफ्ट्स वो बनाते थे, वो सिर्फ अपने शहर में नहीं रखते थे।
हाँ, उनका ट्रेड यानी व्यापार बहुत ही जबरदस्त था। वो बहुत दूर दूर तक सफर करते थे।
व्यापार में मेटल्स का बहुत बड़ा रोल था। वो लोग कॉपर यानी तांबे में टिन मिलाकर एक बहुत ही मजबूत धातु बनाते थे,
जिसे ब्रॉन्ज कहते हैं, कांस।
हाँ, और इसी ब्रॉन्ज से वो मजबूत औजार बनाते थे।
और गहलों के मामले में तो वो मास्टर थे। गुजरात में मिलने वाले लाल रंग के चमकीले पत्थर, जिन्हें कार्नेलियन बीड्स कहते हैं, उनकी बहुत डिमांड थी।
और शंख यानी कॉन्च शेल्स की चूड़ियां भी बनाते थे वो।
ये सारी कीमती चीजें बहुत दूर सूसा नाम की जगह तक भेजी जाती थी, जो आज ईरान में है।
आइवरी कोम भी मिली है
ओमान तक। दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आखिर वो इतना सारा सामान भेजते कैसे थे?
जवाब बहुत ही रोमांचक है। समंदर के रास्ते,
पानी के जहाजों से।
बिल्कुल, और इसका सबसे बड़ा सबूत है गुजरात का लोथल शहर। वहाँ एक बहुत ही विशाल डॉकयार्ड मिला है।
डॉकयार्ड, जहाँ जहाज आके रुकते हैं।
जी हाँ, ये डॉकयार्ड 2 फुटबॉल मैदानों से भी बड़ा है, 217 मीटर लंबा।
217 मीटर? ये तो इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा चमत्कार है।
और व्यापार में धोखाधड़ी से बचने के लिए वो सील्स यानी मुहरों का इस्तेमाल करते थे।
सील्स, जैसे आज के बारकोड होते हैं।
एग्जैक्टली, सामान पैक करके उस पर गीली मिट्टी लगाकर ये सील छाप दी जाती थी। इससे पता चलता था कि सामान के साथ रास्ते में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है।
बहुत ही स्मार्ट तरीका था। तो रिमेम्बर दिस, ब्रॉन्ज बनाने के लिए कॉपर और टिन को मिलाया जाता था। गुजरात के लोथल शहर में जहाजों के लिए एक विशाल डॉकयार्ड था।
लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी बदल दी।
हाँ, सो व्हाट इज दिस ऑल मीन? 1900 BCE के आसपास ये शानदार शहर अचानक खाली क्यों हो गए? क्या कोई युद्ध या वॉर हुआ था?
इतिहास में अक्सर ऐसा होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। खुदाई में कोई हथियार या वेपन्स नहीं मिले हैं
और ना ही किसी सेना के सबूत मिले हैं।
बिल्कुल, ये एक बहुत ही शांतिपूर्ण सभ्यता थी। युद्ध से शहर नष्ट नहीं हुए थे।
तो फिर असली कारण क्या था? इतने बेहतरीन शहर खाली क्यों हो गए?
असली कारण था क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन।
ओहो,
2200 BCE के बाद बारिश बहुत कम होने लगी। मौसम में एक ड्रायर फेज यानी सूखापन आ गया।
और इस सूखे का असर नदियों पर पड़ा। महान सरस्वती रिवर सूख गई।
यह एक सीधा कॉज इफेक्ट है। पानी नहीं तो खेती नहीं, और खेती नहीं तो खाना नहीं।
इतने बड़े शहरों को बिना खाने के कैसे चलाया जा सकता है?
इसलिए लोगों को मजबूर होकर शहर छोड़ने पड़े,
और वो वापस छोटे गांव यानी रूरल सेटलमेंट्स में जाकर रहने लगे।
हाँ, क्योंकि गाँव में कम पानी और थोड़ी खेती से गुजारा करना आसान होता है।
ये बहुत ही दुखद लेकिन जरूरी सबक है।
बिल्कुल।
तो रिमेम्बर दिस, 1900 BCE के आसपास हरप्पन सिविलाइजेशन का पतन क्लाइमेट चेंज और सरस्वती रिवर के सूखने के कारण हुआ, किसी युद्ध या वॉर के कारण नहीं।
पर एक बात अच्छी हुई कि उनके शहर भले खत्म हो गए, लेकिन उनकी तकनीक और कल्चर आने वाली पीढ़ियां को जरूर मिले।
ये एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। चलिए आज की इस डीप डाइव को तेजी से रिवाइज कर लेते हैं।
हाँ बिल्कुल।
हमने दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन को देखा, उनकी शानदार टाउन प्लानिंग को समझा,
कॉटन की खोज और लोथल के विशाल डॉकयार्ड के बारे में भी जाना,
और आखिर में ये भी समझा कि क्लाइमेट चेंज के कारण ये महान शहर कैसे खाली हो गए।
ये सच में एक बहुत ही अद्भुत सफर था।
बिल्कुल था। और अब जाने से पहले एक ऐसा विचार जिस पर शांति से सोचा जा सकता है। जरा कल्पना की जा सकती है कि अगर आज हमारे आधुनिक शहरों का सारा पानी अचानक सूख जाए तो क्या होगा?
क्या हमें भी अपने बड़े बड़े घर, गाड़ियां और मॉल छोड़ने पड़ेंगे?
क्या हमें भी वापस गांव की तरफ लौटना पड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे 4000 साल पहले हरप्पन लोगों ने किया था?
पर्यावरण और नदियों को बचाना कल भी जरूरी था और आज भी बहुत जरूरी है।
एकदम सही बात है। इस डीप डाइव में हमारे साथ इस ऐतिहासिक सफर पर चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय के साथ।